अल्लाह ताला की बात का मौका मिल जाना ये एक बहुत बड़ी नेमत है, और जितने भी लोग उसके अंदर हिस्सेदार होते हैं वो सब अल्लाह ताला से इसका रिवॉर्ड पाते हैं। आज का हमारा सेशन जो है, हमारी एक बहुत ही प्यारी स्टूडेंट हैं सिस्टर नौशीन, इनके घर पे एक प्रोग्राम हो रहा है जहाँ हम सब के मेहमान बैठे होंगे यकीनन, उनकी ऑनर में है। तो मैं जितने साथी नौशीन के घर में बैठे उन सबको वेलकम भी करती हूँ, और आप सब के लिए बहुत सारी दुआ भी है। और आप सबका यहाँ बैठना कितना बाबरकत है कि आपकी वजह से कितने ही और लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह ताला आज हम रबीउल अव्वल ही की निस्बत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बातें देखेंगे, हमारा उनके साथ ताल्लुक़ क्या है, हमारा ये टॉपिक हकीकत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारी मोहब्बत के दावे का पोल भी खोलता है, और हम देखेंगे कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते भी हैं कि नहीं, पहली बात। और दूसरी बात है कि फिर अगर ये मोहब्बत है तो इसकी कोई अलामतें भी हैं हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि सिम्टम्स के बगैर ना तो कोई बीमारी पहचानी जाती है और ना कोई खुशी, कोई अच्छी चीज़। जब तक प्रेगनेंसी के सिम्टम्स ना दिखें, प्रेगनेंसी भी वेरीफाई नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह से हम सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की बात करते हैं, और हमें खुशी महसूस होती है कि हम अपने नबी की ये बात करें। लेकिन क्या हकीकत में हमारी ये मोहब्बत आपके साथ सही मोहब्बत वाली मोहब्बत है, या हम सिर्फ उसको आदतन कहते और दोहराते रहते हैं? हमारा आज का टॉपिक पूरे का पूरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द घूमता है। एक ऐसा फूल, एक ऐसा गुलाब जिसको अल्लाह ताला ने सहरा में खिलाया था। गैरती ज़र इन के अल्फाज आते हैं उस वादी के लिए जहाँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी माँ को छोड़ा गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा कुर्बानियों की ज़िंदगी है, अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बात कहें और करें, लेकिन तذکرہ ना करें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों का, तो ऐसे लगता है कि हक अदा नहीं हुआ। सहरा में एक फूल खिला जिस फूल को आज हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानते हैं, लेकिन इस फूल के खिलने और इसके लिए ज़मीन हमवार करने में जो ज़मीन नरम की थी वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी कुर्बानियों से हुई थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के चुने हुए नबी थे। अल्लाह ताला ने तो उनका तारुफ कुरान पाक में कई खूबसूरत तरीके से कराया, लेकिन अगर हम आयत को देख लें कि इस काल लहू रब्बुहु अस्लिम काल इस अस्लम तो लिरब्बिल आलमीन, कि जब उनके रब ने उनसे कहा कि फरमाबरदार हो जाओ, मुस्लिम बन जाओ, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला मैं तो पहले से ही फरमाबरदार हूँ। बहुत सारे अहकामात जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिले और वो मानते ही गए, उसमें एक बहुत ही मुश्किल हुक्म हो सकता था मानने के एतबार से अगर वो दिमाग से सोचते और अक़ल से सोचते, लेकिन उन्होंने अक़ल से नहीं सोचा, उन्होंने दिमाग से नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने दिल से सोचा। और जो बात दिल से सोची जाती है उसमें इंसान गलती नहीं खाता, और जो बात दिल से सोची जाती है उसके करने में इंसान को कोई रुकावट रुकावट नहीं लगती। और वो बात क्या थी कि बुढ़ापे की औलाद, पहलोठी का बच्चा, दुआओं से मांगा हुआ, अल्लाह ताला ने बुढ़ापे का जो सहारा दे दिया, अब उसको उसकी माँ के साथ दूर सहरा में छोड़ा। और अल्लाह का ये हुक्म इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ऐसा ही हुक्म था जैसे आज किसी का अकेला बच्चा हो और कहा जाए कि इस बच्चे को तुम दूर किसी बस्ती या किसी ऐसी जगह में छोड़ाओ कि जहाँ कोई भी इंसानी दुनिया की ज़ाहरी चमक दमक नहीं, वहाँ कोई ऐसी चीज़ ना दिखे कि जिससे कोई इंसान अपने आप को बहुत कामयाब समझे। हुक्म बड़ा मुश्किल था, अल्लाह से वजह भी नहीं पूछी, पूछने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि अल्लाह पर यकीन जो है, अल्लाह ताला पर जिसको यकीन आ जाता है ना, वो अल्लाह ताला के फ़ैसलों पे भी यकीन रखता है, और नतीजा क्या होता है कि वो बस मानने का आदी होता है, सवाल नहीं पूछता। इसीलिए तो अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहते हैं इस काल लहू रब्बुहु अस्लिम काल असलम तो लिरब्बिल आलमीन, जब भी उनके रब ने कहा कि मती हो जा, फरमा बरदार हो जा, कहा ठीक है अल्लाह ताला हो गया, बस नो प्रॉब्लम। मोमिन को कोई मसला नहीं होता अल्लाह की बात मानने में, उसका दिल कंपस यानी पुरकार की तरह अल्लाह के हुक्म के आगे झुकता जाता है। जिधर अल्लाह झुकाए वो झुक जाता है, जो कहे अल्लाह कर लो वो कर लेता है, जिससे रोके रुक जाता है, जब इंसान अल्लाह के हुक्म के आगे अकल को इस्तेमाल करता है तो इबलीस की तरह बहकने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इबलीस अकलमंद बहुत था, लेकिन उसने अल्लाह ताला के हुक्म के आगे अपनी अकल ऐसी दौड़ाई कि फिर सवालात में पड़ गया और नतीजा क्या निकला कि वो अल्लाह ताला की रहमत से निकल गया। चूँ चिरा किए बगैर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बीवी और अपने बच्चे को एक ऐसी जगह पे छोड़ गए जहाँ किसी किस्म का कोई सब्जा नहीं था। गैरदी ज़रइन का लफ्ज़ आता है कि अल्लाह मैंने अपने घर वालों को एक ऐसी बस्ती में ला के छोड़ दिया है कि जहाँ कुछ भी नहीं उगता। और अल्लाह की बातों पे यकीन था। शुरू में बीवी ने पूछा कि इब्राहिम आप हमें यहाँ क्यों छोड़ रहे हैं? खामोश क्यों? कि जब हम बहुत ज़्यादा दुनिया वालों को जवाब देने लग जाते हैं ना, तो फिर हम बास दफ़ा अल्लाह के हुक्म से पीछे हटने लगते हैं। खामोश क्योंकि समेना के बाद अताना है, समेना के बाद सअलना नहीं है कि सुना, अब सवाल करते हैं क्यों करें, क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, ये नहीं कहा, बल्कि चल पड़े तो चल पड़े। नतीजा क्या हुआ कि जब अल्लाह ताला ने बात कही तो मान के चल पड़े। बीवी ने कहा सिर्फ ये बता दीजिए कि क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया? इस पे कहा नाम हाँ। कहा अच्छा फिर गम नहीं, अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। जब नेक बंदे होते हैं ना तो अल्लाह सुबहान तआला उनको बीवियाँ भी अच्छी दे देता है, या फिर उनकी बिगड़ी हुई बीवियों को भी अच्छा कर देता है, वरना चल नहीं सकता दीन का मामला। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस आजमाइश में पूरा किया और वो बीवी बच्चे को छोड़ के आ गए। ज़रा सोचिए दिल पे क्या गुजरा होगा। लेकिन वो दिल जो अल्लाह की अतात के जज्बों से मामूर हो जाता है, फिर उसको ज़ाती खुशी गम कोई बहुत बड़ा नहीं लगता। नतीजा क्या हुआ कि वापस आए। ये था वो सहरा जहाँ पे अब ज़मीन तैयार हो रही है, जहाँ अल्लाह ताला का घर था, लेकिन अब वो कहीं छुप चुका था। अब उसकी बुनियादें तो कहीं ना कहीं छुपी हुई थी, लेकिन उसकी दीवारें ढह चुकी थी। फिर मारूफ वाक्या है, आप सब ने कई बार सुना होगा कि किस तरह से बीवी हाजरा अपने बच्चे के साथ उस जगह पर रही और पानी की तलाश में सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा की तरफ भागती रही। कहने को ऐसे लगता है कि वो भागना अपने बच्चे की प्यास दूर करने के लिए था, बच्चे के लिए पानी चाहती थी। लेकिन अगर देखा जाए तो वो सिर्फ एक बच्चे की प्यास नहीं थी, बल्कि एक उम्मत की प्यास थी। इंसानियत की धरती सूख रही थी, अब उसको ज़रूरत थी कि यहाँ से हिदायत का सरचश्मा आए और अल्लाह ताला इस बियाबान और जंगल को आबाद करें। अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों को जरिया बनाया और वहाँ से जमजम का चश्मा निकाल दिया। जिस तरह जमजम का चश्मा उस दिन से लेकर आज तक मौजूद है और क़यामत से पहले जब तक अल्लाह ताला चाहेगा वो रहेगा, इसी तरह कुछ सालों के बाद वहाँ से हिदायत का एक ऐसा सरचश्मा फूटा, इक़्रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ की सूरत में, कुरान पाक की सूरत में, कि जो भी रहती दुनिया तक के लिए हिदायत का सबब होगा। एक कुर्बानी हज़रत इब्राहिम ने दी इस्माइल को वहाँ छोड़कर। अल्लाह ताला ने उस कुर्बानी के नतीजे में अपने घर को दोबारा आबाद करवा दिया। पानी का चश्मा आ गया, बीबी हाजरा के लिए रहने का सबब बना। कबीला जुरहम के लोग इधर उधर से आए, इजाज़त मांगी, कहा ठीक है रह लो, पानी मेरा होगा, मैं बेचूंगी, तुम रहोगे। अल्लाह ने किस तरह से गैब से रिस्क का इंतज़ाम किया, हिफाजत भी दे दी। इस तरह से उस शहर की आबादी शुरू हो गई। वो जो एक सहरा था अब थोड़ा थोड़ा वो शहर बनने लगा, लोग वहाँ आके रहने लगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए। उसी कबीले की एक औरत से उनकी शादी हुई। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूर रहने के बावजूद भी बच्चे और बीवी की खबर रखते थे। 3-4 बार वहाँ आना उनका हमें तारीख से साबित है। एक मौके पे तो छोड़ा, फिर उसके बाद एक उनका चक्कर उस दौर में लगता है जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हो चुकी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे, बेटे के घर गए, बेटा पास नहीं था, देखा तो वहाँ उसकी जवान बीवी मौजूद थी। बाप ने कुछ बातें पूछी, क्या हाल है, कैसे हो? उस औरत की ज़ुबान से कुछ नाशुक्री के जुमले निकल गए, क्या करें पूरी नहीं पड़ती, यानी कुछ भी कहा होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उन जवाबों से समझ आ गया कि इस्माइल जैसे फरमाबरदार इंसान की बीवी ऐसी ना शुक्री और ना कदरी नहीं होनी चाहिए। जाते जाते पैगाम दे गए कि बेटा आएगा तो उसको सलाम देना और कहना अपनी चौखट बदल लो। कहा ठीक है, चले गए। बीवी ने आके वैसे ही कह दिया जैसे कहा गया था। बेटा समझ गया और उस औरत को खुद से अलग किया, और उसके बाद एक और औरत से शादी हुई। दोबारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, अब दूसरी बहू थी। पूछा क्या हाल है? कहा अल्लाह का शुक्र है। कैसी चल रही है? कहा बहुत अच्छी चल रही है। मेरा बेटा कैसा है? बहुत अच्छा है। गुजर बसर एक बहुत अच्छी शाकिर बीवी मिल गई, अल्लाह दे देता। अब अल्लाह के दीन के लिए किसी चीज़ से खुद को अगर अलग करते हैं इस वजह से कि आपका अपना दीन ना ख़राब हो जाए, अल्लाह उसके बदले में आपको दुनिया में अच्छा दे देता है, आखिरत में भी। खैर, आप जाते जाते पैगाम देंगे कि बेटे को सलाम देना और कहना कि अपनी चौखट को मजबूत रखना। उस नस्ल से फिर अल्लाह ताला ने एक ऐसी कौम उठाई कि जिसने अल्लाह के प्रोग्राम को पूरा करवाया, और नस्ल दर नस्ल चलने के बाद एक दिन बीबी आमना के घर एक ऐसा फूल खिला कि जिसको आप डेजर्ट रोज़ कह सकते हैं, सहरा का फूल।